Nietzsche.
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্যাস্তি গুরবে বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো মহাপতন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরদ্বিজে গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদভক্তায় নমো।
বিশেষ করে তার স্ত্রী এখানে নিয়ে কিছু অন্তত জল খাবার তো তারপরে কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি, তাহলে একটু ব্যবস্থা কর, কিছু অন্তত একটু জল খাবার কিছু জিজ্ঞাসা আপনি যান একটু জল করতে আসেন, রান্না একটু অন্য আর একটু সিদ্ধ দিয়ে তো কিছু এখন একটু মিষ্টি টিষ্টি কি একটু মুভি দিলে একটু জল খাবার যান। আজ উসকি কিসকি তিথি হ্যাঁ রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাল ভোগ এসেছে, আজ কেন
আজকে দাস গোস্বামী গোপাল ভট্ট গোস্বামী আর কবিরাজ গোস্বামী তিরুভাব আপনার কোথায় কাল ছিল আমাদের কোথায় আজ আছে আজকে
এসব বলতো রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃষ্ণদাস গোস্বামী
গোপাল ভট্ট গোস্বামী
তিনজনের
পাল ভট্ট তিনজনের তিরহ
আচ্ছা একটু সংক্ষেপে কিছু বলো আর একটু মাইকও নাই বলো রঘুনাথ দাস গোস্বামী
হম লোকনে শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে সম্বন্ধ মে কুছ কুছ শ্রবণ কিয়া। পহলে মে মহাপ্রভু কে পার্ষদ পরিকর শ্রী गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में बतला रहा हूँ। समय कम है, संक्षेप में कुछ कुछ बतलाऊंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता थे दक्षिण प्रदेश के रहने वाले वेंकट भट्ट, और उन्हीं के छोटे भाई गोपाल भट्ट के गुरु भी थे और शिक्षक भी थे। उन्हीं से उन्होंने समस्त शास्त्र पढ़ा था। उनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती था। प्रबोधानंद सरस्वती और ये तीनों भाई और गोपाल भट्ट भी पहले श्री संप्रदाय के वैष्णव थे, दीक्षित वैष्णव थे। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु के चार महीने के संग में वो एकदम बदल गए और वे महाप्रभु के अनुगत राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में आ गए। साधारण रूप में जिसका संस्कार हो जाता है जिस विषय का, वो बदलता नहीं। जैसे अनुपम गोस्वामी का, मुरारी गुप्त का, लक्ष्मी जी का, ये सब संस्कार बदला नहीं, किंतु ये श्री संप्रदाय के उपासना की पद्धति को छोड़ करके महाप्रभु जी के विचारधारा में आए और प्रेममयी मधुर रूप से गोपी भाव से आराधना में लगे। इससे मालूम होता है कि कुछ संस्कार ऐसे हैं जो बदल सकते हैं प्राचीन, और कुछ संस्कार हैं जो नहीं बदल सकते। जैसे वो मुरारी गुप्त इत्यादि का बतलाया, शिवाश पंडित का बतलाया और लोगों का, तो किसी का बदल जाता है, किसी का बदलता नहीं। ऐसा क्यों? जिसका गाढ़ संस्कार नहीं होता और जिसके स्वरूप का भाव उदित नहीं होता और कुछ संस्कार पूर्व जन्म के बन जाते हैं साधारण संग से, वो बदल जाते हैं। और जिसका संस्कार स्वरूपगत है और भजन के बाद में भजन करते 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 ठीक भगवान की कृपा से उचित ढंग से जिसका संस्कार बढ़ा है, उसका संस्कार नहीं बदलेगा। इनका दक्षिण देश में जन्म था और साधारण इनका संस्कार श्री संप्रदाय में नारायण और लक्ष्मी की उपासना थी साधारण रूप में। अभी उनके हृदय का स्वरूपगत संस्कार अभी उत्पन्न नहीं हुआ था, प्रकाश नहीं हुआ था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा ये अभी ये लोग जो श्री संप्रदाय के अनुसार में भजन कर रहे हैं, किंतु इनका स्वरूपगत भाव ये नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी के थोड़े दिनों के संग से ही इनका संस्कार बदल गया। किंतु मुरारी गुप्त का, शिवाश पंडित का महाप्रभु जी हम समझते हैं कि कितने दिनों तक संग किया, किंतु उनका परिवर्तन नहीं। हम लोग भी पहले राम के उपासक थे, संग में आकर के हम लोगों का बदल गया। इसका मतलब है जो हमारा संस्कार जो पहले वाला था वो ठीक नहीं था, वो ऐसा हो जाता है। जैसे होता है ना नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म तो ठीक है, कृष्ण की नित्य सेवा है, किंतु अब संसार में जन्म लेकर के अनित्य संबंध करके हम लोग उसी को अपना कर्तव्य मान लेते हैं। तो जिस समय में हम लोगों को सद्गुरु के संग में आने पर जब हमें यह ठीक प्रतीत हो जाता है, समझ जाते हैं, तो पहले वाला संस्कार और विचार को छोड़ करके कृष्ण का नित्य दास समझ करके अपने को वैसा करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से भी इसको भी समझना चाहिए। पहला संस्कार उनके स्वरूपगत नहीं होगा, इसलिए महाप्रभु के संपर्क से उनका पूर्व जो स्वरूपगत जो संस्कार था वो उदित हो गया और इस रस में प्रवेश कर। दूसरी बात, गोपाल भट्ट गोस्वामी के ये एक विशेष है कि हम लोग श्री विग्रह का पूजन करते हैं, किंतु हमारी निष्ठा वैसी दृढ़ नहीं होती, उनको स्वयं भगवान नहीं मानते, ठीक से नहीं मान पाते। यदि कुछ मानते भी हैं तो साथ साथ में कुछ संदेह होता है, भगवान के नाम में भी, भगवान के कथा में भी, भगवान के शिव विग्रह में भी कुछ कुछ संदेह रहता है, और इसी को कहते हैं अनर्थ। वो महाप्रभु के आदेश से वृंदावन आ रहे थे दक्षिण प्रदेश से, भ्रमण करते करते तीर्थ यात्राओं में वो गोमती के किनारे होते हुए उसके उद्गम स्थान नेपाल की तराई में एकदम पहुंच गए, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। वहाँ पर गोमती नदी में शालग्राम शिलाएं मिलती हैं तरह तरह की, और वैष्णव लोग उसको ले आते हैं, उसमें बहुत से चिन्ह होते हैं। एक छेद होगा उसके अंदर में सोना भरा रहता है, थोड़ा सा जरूर रहेगा, नहीं तो शालग्राम नहीं होगा। या कुछ शिलाएं होती हैं उसमें स्वर्ण भी नहीं होता है, तो भी ऐसे वो चिन्ह होता है जिसके द्वारा आदमी समझ लेता है, और बहुत स्निग्ध होता है, एकदम सूचिकन। जिनको इसकी परीक्षाएं जानता है वो समझता है। चूंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य ये थे पहले, इसलिए श्री संप्रदाय में कुछ अर्चन प्रधान होता है और शालग्राम का उनका आदर होता है, इसलिए पहले से उन चिन्हों को जानते थे, और कहाँ वो मिलते हैं वो भी जानते थे, गोमती शिला में उत्तर भारत में। इसलिए यात्रा करते करते ठीक गोमती नदी के किनारे होते हुए उस स्थल पर पहुँचे जहाँ पर कि ये गोमती नदी निकलती है, वहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके उन्होंने देखा कि उनके हाथों में एक लंबा सा इतना एक शालग्राम मिला, बहुत सूचक कर। वृंदावन में आप लोगों ने सुना होगा कि एक सवा मन के शालग्राम है, तो वो सवा मन के होंगे तो कितने बड़े होंगे,
दो
इतने बड़े होंगे, वहाँ से लाए गए, वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा की गई, तो इसलिए लंबे से इतने और इतने लंबे होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसमें चिन्ह भी था, जैसा चक्र का चिन्ह होता है उनमें चिन्ह था, उसको निकाल करके बड़े प्रसन्न हुए और उसको ले करके वृंदावन में आए और सेवा पूजा करने लगे। पत्थर की ये शिला है, शालग्राम है, शिला है, ऐसा नहीं, उनको स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मानकर, राधा रमण मान करके और उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि महाप्रभु जी से ये सिद्धांत सुना था, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्वपूर्णमतांग राजन विश्वास नहीं बजायते। भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, और भगवत स्वरूप ये वैष्णव हैं, उनमें जिनको अल्प पुण्य होता है उनको विश्वास नहीं आता, उनको संदेह बना रहता है, थोड़ा सा कोई कारण हो गया बस, यदि ये भगवान होते तो अभी महावन में वो कृष्ण की मूर्ति थी उसको खंडित कर दिया गया, तो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सके, ऐसा क्यों हुआ, यदि भगवान होते तो रक्षा कर लेते, एक चूहा उनके सिर पर चढ़ करके टट्टी और पेशाब कर दिया और उनका जो प्रसाद था वो खाने लग गया, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते, बिना गुरु कृपा के इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब उन्होंने देखा जैसे भगवान का जैसे विग्रह
खंडित हो गया तो वो भगवान है ही नहीं, भगवान चले गए, इसलिए भगवान थे ही नहीं, वो पत्थर की मूर्ति थी। इसलिए लौकिक विचार से जब हम विचार करेंगे तो भगवान की भगवत्ता कहीं भी नहीं मिलेगी। वो चैतन्य महाप्रभु जी से शिक्षा लाभ कर इस विषय में पारंगत थे, इसलिए उस मूर्ति को राधा रमण मान करके और उनकी सेवा करने लगे। कोई शालग्राम को नारायण मानता है, कोई शालग्राम को विष्णु मानते हैं, कोई शालग्राम को नृसिंह मानते हैं, कोई शालग्राम को राम मानते हैं, सीता मानते हैं, कोई वैष्णव लोग कृष्ण मानते हैं, कोई उनको सहर्ष शीर्षा पुरुष उनको मानते हैं, कोई कर्णाब्धिशाही विष्णु मानते हैं, कोई माने विष्णु तत्व के रूप में नीचे से लेकर के ऊपर तक सीमा तक उनको मान करके सेवा की जा सकती। देखो उनकी उपासना ऐसी थी कि रात में उन्होंने सोचा मैं ठाकुर जी को पल्ले में झुला नहीं सकता, इनके हाथ पैर नहीं हैं, मैं इनको सजा नहीं सकता, श्रृंगार नहीं कर सकता, कुछ खेद हुआ और स्मरण करते 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 सो गए। नित्वाई नहीं तंद्राई, उसमें देखा जा अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, देखो तो मैं कैसा सुंदर हूं, जाओ तो खोलो तो अभी चल। वहीं पर सिंहासन पर रखे थे ये लोग, शालग्राम शिला को या गोवर्धन शिला को कैसे रखते हैं, कपड़े में बांध करके सिंहासन में और इसमें झूला लेंगे। हम लोगों ने भी ऐसा ऐसा वैष्णव को देखा है जैसे यहाँ पर बांध करके सिंहासन को बांध लेंगे और अलग से इधर उधर पेटी में बंद करके ताला लगा करके ऐसे नहीं ले जाते, बस यहीं पर झूला रखा, जहाँ गए वहाँ पर पधरा दिया, उनकी सेवा की। इसी प्रकार से वो रखते थे, सिंहासन खोल करके उठा करके उनको प्रणाम किया और जरा कौतूहल बस से ही अपने ठाकुर जी को देखा। सचमुच में देखा दो सुंदर सुंदर भुजाएं, बड़ा सुंदर अपरूप मुखारविंद और साथ ही साथ देखा जो वैसे ही कमर उस प्रकार की बंसी बजाते हुए गोविंद गोप तीनों का ही रूप उसमें देखा। किसी के समान पैर, किसी के समान में कमर, किसी के समान वस्त्रक्षल और मुखारविंद देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे सनातन गोस्वामी को यहाँ से कह करके मदन मोहन ले गए, वृंदावन गए, जैसे साक्षी देने के लिए कहाँ वृंदावन से चले गए विद्यानगर दक्षिण प्रदेश में, यहाँ से कम तो 2-3 हजार मील चले गए साक्षी देने के लिए। उनकी भक्ति ऐसी थी और हमारा दुर्भाग्य ऐसा जो हम लोग उस भक्ति के वैसे पात्र नहीं हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी रहते हुए बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और उनसे आदान प्रदान विचारों का वो सब कर रहे हैं। अब बतलाइए जो विग्रह शालग्राम से शिव विग्रह बन गई, अब उसको गोपाल भट्ट किस रूप में सेवा करते हैं। उनकी सेवा केवल वैधि मार्ग की नहीं है, उनकी सेवा कैसी है, अत्यंत रागमयी, रागमयी उनकी भक्ति है, जिनके प्रेम से वो ऐसे बन गए। उनसे बोलते होंगे, केवल सपने में ही बोलना नहीं, सचमुच में बोलते होते हैं और उनको वो खिलाते हैं, वो मांग करके खाते हैं, इस प्रकार से देखा जाता है। इसलिए हम साधक लोग भी वैसे भावना के साथ उनका भजन करें, ऐसे गुरु जी हों हमारे। गोपाल भट्ट के यथार्थ में गुरु कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे, उनके पहले गुरु थे ठीक है, किंतु रागमार्ग की शिक्षा और भजन की शिक्षा सब चैतन्य महाप्रभु जी से उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने ऐसा लिखा भी है। प्रबोधानंद ने शिक्षा दिया होगा केवल श्री संप्रदाय के विचारों की, जब महाप्रभु से भेंट नहीं हुई थी, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई तब से उन विचारों को छोड़ करके इस विचार में आए, तब नहीं, हाँ वो भी बदल गए, ये भी बदल गए।
तब आदान प्रदान हो सकता है, किंतु उस समय में गुरु चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भजन भी करना चाहे तो वैसे ये सड़गोश्याम मास्टक है, ये सब इन इन छवों के लिए, छव ऐसे ही एक एक से थे, यद्यपि इनमें तारतम्य है किंतु तो भी बड़े भारी विद्वान थे। इन्होंने हरिभक्ति विलास का उपकरण पहले से संग्रह कर रखा था और सनातन गोस्वामी के कहने से और भी प्रमाण चारों तरफ से खोज ले आए और उसको विषय के अनुसार में कैसे दीक्षा होती है, सद्गुरु का लक्षण पहले लिखा, सद्गुरु का लक्षण क्या है और सद्गुरु किसको कहते हैं, सत शिष्य का लक्षण क्या है, असत शिष्य कौन है, दीक्षा कैसे होती है, दीक्षा की विधि कैसे होती है, हरि नाम क्या है, इसके बाद में श्री विग्रह कैसा होना चाहिए, उसकी स्थापना कैसी होनी चाहिए, उसका लक्षण कौन है क्या है, जो प्रतिष्ठा करेगा उसका लक्षण क्या है, वो कैसा होना चाहिए, और ये शालग्राम शिला के लक्षण क्या है, उन्होंने करीब करीब 16-17 प्रकार के शालग्राम शिला का वर्णन किया है, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी विधियां क्या हैं पूजा का अर्चन का, उनका पूजा कौन कर सकता है। कुछ स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने कहा कि स्त्रियां कभी भी शालग्राम की सेवा नहीं करेंगी, कभी नहीं कर सकती और कोई भी शूद्र नहीं कर सकता, किंतु हरिभक्ति विलास जब संग्रह किया, इन्होंने दीक्षा ग्रहण की हुई, स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का अधिकार है, अधिकार में किसी, सभी जीव मात्र का अधिकार है, सद्गुरु पाने पर और उनके द्वारा संस्कार लाभ करने पर सबका उसमें अधिकार है। और उन्होंने ये सब दिया है, इसमें छोटी सी पुस्तक सत्क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका इत्यादि, ये सब दिया है। कोई भी उनके पहले कोई भी ऐसा नहीं दिखला है। सनातन गोस्वामी ने टीका में स्वयं करके और जो प्रमाण ये जानते थे उसमें प्रमाणों को दे करके और उसको सबको क्लियर किया। इसलिए व्रत निर्णय इत्यादि कौन कौन से ठाकुर जी के मास के कार्तम पहले चैत मास वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण कौन कौन महीने में कौन कौन से उत्सव हैं कैसे उसके हैं, एकादशी का निर्णय, महाद्वादशी का निर्णय, जन्माष्टमी का निर्णय, ये सब जो वैधि भक्ति के ये सब हैं, ये सब विस्तार पूर्वक उन्होंने ग्रहण और सनातन गोस्वामी ने उन सब को लेकर के और उसकी टीका लिखी और उन्होंने कहा ये पुस्तक को किसने लिखा, किंतु यथार्थ में इसके लेखक और प्रेरणा देने वाले कौन हैं और उनके हृदय में कौन प्रेरणा दिया, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यह पुस्तक महाप्रभु या सनातन गोस्वामी की है, किंतु उन्होंने देखा मैं तो मलेच्छ हो गया, दीनतावशतः अपने को हीन समझा, अथवा कुछ लोग ऐसा समझेंगे अरे ये तो मुसलमानों के साथ में रहते रहते जरूर मुसलमान हो गया होगा, इसलिए लोग हमारी हमारे द्वारा लिखी हुई पुस्तक पर उतना विश्वास नहीं स्थापन कर सकते हैं, किंतु ये प्रारंभ से ही ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान भी थे और सब समय शुद्ध ही रहे, इसलिए इनके नाम से उस ग्रंथ को पूछा। आप वास्तव में ये ग्रंथ सनातन गोस्वामी का ही था, उन्होंने सहयोग किया था ये बात थी और अंत में इन्होंने अपनी टीका लिख करके और उसका प्रचार करा। आज समस्त वैष्णव समाज में उस हरिभक्ति विलास का सम्मान है, इसका तृप्त संस्कार दीपिका और ये सब ग्रंथ लिखे जिसके अनुसार में संन्यास इत्यादि होता है और सब का। आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी तिरोभाव तिथि है, एक साधक कैसे नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो गए हैं, महाप्रभु अप्रकट हो गए हैं, कृष्ण भी अप्रकट हैं, किंतु कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा से इन लोगों का भी दर्शन कर सकता है, ये विश्व कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिखलाया। कैसे अपने घर में रहते हुए दो भाई थे। एक दिन उनके घर में कीर्तन हो रहा था, कीर्तन होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का, अभिराम गोस्वामी आए और कीर्तन करने गए नित्यानंद जी का। उन्होंने ये क्या कर रहा, उसके भाई ने कहा क्या कर रहे हो, महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु का कीर्तन क्यों करने लगे। उसके हृदय में नित्यानंद के प्रभु निष्ठा नहीं थी। क्यों नहीं निष्ठा थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था ये संन्यास लेने के बाद में, अवधूत होने के बाद में, परमहंस होने के बाद में कैसे कोई व्यक्ति संसार में आकर के विवाह शादी कर सकता है, और इस निर्णय ने दो दो शादियां कर ली, इनके समझ में नहीं आया। साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने समझा, इसलिए नित्यानंद प्रभु जी का कीर्तन को मना कर दिया। अभिराम गोस्वामी उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे, तुम अर्ध कुकुटी है, अर्ध कुकुटी माने क्या, आधा मुर्गी है? एक मुर्गी मुख से खाती है और अंडा देती है पीछे से। तो उन्होंने कहा जी मुख की जरूरत क्या है, पिछला भाग रहेगा उसी से अंडा मिल जाएगा। तो उसने कहा जैसे खाने की कोई जरूरत नहीं, इसको काट दिया, काटते ही मुर्गी मर गई और अंडा मिला नहीं। तो ऐसे ही वो महाप्रभु को मानता है और नित्यानंद को नहीं जो मानता है, वो दोनों पाषंड है। जो कृष्ण को मानते हैं बलदेव को नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं राधा जी को नहीं मानते, वो सब पाषंड ही। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई के ऊपर में असंतुष्ट हो गए, जब तुम नित्यानंद प्रभु का कीर्तन बंद करते हो, जाओ तुम्हारे से आज से हमारा कोई संपर्क नहीं है और तुम्हारे घर में आज से अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये कह करके और घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके कहे अब इस घर में हम नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन में जाएंगे। ऐसा कह करके अपने भाई को क्रोध पूर्वक छोड़ दिया और उसका घर का अन्न जल नहीं खाया। आज तुमने नित्यानंद प्रभु भगवान का तुमने निंदा की, घर छोड़ करके चले आए। रात का समय 11-12 बज रहा था, 12 बजे ही घर छोड़ दिया भाई पर क्रुद्ध होकर। गांव के बाहर में आकर के सीमा पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ में अपना सिर रख करके बड़े दुखित होकर के हाय हाय अब मेरी क्या गति होगी, नित्यानंद प्रभु की मैंने आज जो निंदा सुनी, आज हमारा सब कुछ सर्वस्व नष्ट हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या गति होगी। वैष्णव की निंदा सुन करके यदि निंदुक हो तो उसके जिह्वा को काट दे, अथवा नहीं तो तर्क और युक्ति के द्वारा स्तंभन कर दे, और नहीं कुछ कर सकता है तो गंगा जल में कपड़े बांध करके और गंगा जल में या यमुना के जल में स्नान कर ले और उपवास करे तो वो पवित्र होगा। और यदि नहीं करता है कहते हाँ हाँ ठीक ही कर, नित्यानंद प्रभु जी ने शादी की और सचमुच में ये तो एकदम गृहस्थ था। अब उसने स्नान नहीं किया, उसका समर्थन किया तो क्या होगा, पाषंड हो जाएगा। और यदि स्नान नहीं किया, उसको अनुताप नहीं हुआ, तुम्हारे गुरु जी को मैं जानता हूं, उनको कुछ आता जाता नहीं, बड़े स्वार्थी हैं, धन लोलुप है और तत्व ज्ञान नहीं, तुमने यदि हाँ में हाँ नहीं भी मिलाया, कुछ नहीं कहा, तो तुम्हारी गुरु भक्ति या सब भक्ति नष्ट हो गई। किसी वैष्णव की निंदा सुना, क्या कर रहा है तुम लोग, चुपचाप बैठो, क्या कर रहा है, बंद कर दो, इसलिए गुरु की, भगवान की और वैष्णव की निंदा शुरू करके हृदय में अनुताप होना चाहिए और दुख होना चाहिए। यदि दुख नहीं हुआ
तो समझो ये तुम्हारा ये को दोनों कुल नष्ट हो गया। इसलिए या तो प्रतिकार करो, और नहीं प्रतिकार कर सकते हो तो कपड़े के साथ में स्नान करके गंगा जमुना में, और फिर उपवास करके भगवान नाम करके शुद्ध हो, और कभी उस व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, ये एकदम दृढ़ धारणा। इसलिए जब ये छोड़ करके चले गए घर और वहाँ पर अनुताप करने लगे, अनुताप करते करते हृदय में कुछ दुख हुआ, उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु साक्षात रूप में आकर के और उनके सिर पर चरण रख रहे हैं। ओह तुम हमारे लिए अपने भाई का त्याग कर दिया और उसके लिए दुखी हो रहे हो जो हमारी निंदा इसने की, जाओ वृंदावन में जाओ और मेरी कृपा से तुम वृंदावन में राधा कृष्ण का, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन का दर्शन करेगा, वृंदावन भी तुमको दर्शन करेगा, रूप सनातन की कृपा तुम्हें मिलेगी, उनका भी दर्शन मिलेगा और तुम शीघ्र ही सिद्धि लाभ करोगे। बस वहाँ से छोड़ करके चले आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, वृंदावन में आए। उस समय में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं थे, किंतु कुछ दिनों के बाद उनका दर्शन पाया, जीव गोस्वामी उस समय थे, उनका संग किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे उनका संग किया, रूप गोस्वामी की भी उन पर कृपा हुई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया है कि नित्यानंद प्रभु कृपा से मैंने रूप सनातन को पाया, दर्शन किया, वृंदावन का दर्शन किया। अभी जो हमारा वृंदावन का दर्शन है वो दर्शन नहीं है, अभी स्थूल जड़ दर्शन है। हाँ थोड़ी सी श्रद्धा तो है किंतु मूल श्रद्धा नहीं है, यहाँ का एक एक रेणु कृष्ण की कृपा है और उसमें सामर्थ्य है प्रेम भक्ति देने का, राधा कृष्ण को दर्शन कराने का उनमें ऐसा सामर्थ्य, एक एक रेणु का नाम है। वहाँ के प्रति वृक्ष कुंज लता पशु पक्षी कीट पतंग सभी सच्चिदानंद स्वरूप और कृष्ण लीला के अनुकूल हैं, कोई साधक हैं कोई सिद्ध है, कोई सिद्ध हैं वो तो सिद्ध ही हैं, जो साधक भी हैं पूर्व जन्म की सुकृति और भक्ति के फल से वो वृक्ष बन करके वहाँ पर आराधना करते हैं। कैसे लोग अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रौपदी इत्यादि राधा कुंड के वृक्ष बने हुए हैं, उद्धव जी वहाँ पर घास बने हुए हैं कुसुम सरोवर में। इसलिए जब उनका दर्शन होगा, यथार्थ दर्शन होगा ना, तब तो यथार्थ दर्शन है। अभी हमारे न तो वृंदावन का न मथुरा का न कहीं कहीं का हम लोगों का दर्शन है, हम लोग अभी स्थूल और जड़ दर्शन। तो नित्यानंद प्रभु के कृपा से उनको वृंदावन का दर्शन हुआ, उनकी कृपा से रूप सनातन जी की कृपा उनको मिली, उनका भी दर्शन मिला, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हुई उनका दर्शन मिला, और कृष्ण की जितनी भी लीलाएँ हैं उनको भीतर में अनुभूति हुई और उसी का चैतन्य चरितामृत में उन्होंने वर्णन किया। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा, बलदेव प्रभु की कृपा वही यथार्थ है। यदि हम इसको समर्थ हुए आकर्षण करने में उनकी कृपा, तो हमारा साधन भजन संपूर्ण रूप से सुस्त होगा और हम भी वृंदावन में दर्शन कर उसी नित्यानंद प्रभु का, उन्हीं नित्यानंद प्रभु के प्रकाश हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, इनके कृपा से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा का प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्राप्त की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से, उन्होंने जो अखंड गुरु तत्व है उनकी कृपा से चैतन्य चैतन्य, यहाँ तक कि मदन मोहन हाथ पकड़ा करके पकड़ करके और चैतन्य चरितामृत अर्थात कृष्ण की और महाप्रभु की लीला दोनों को मिला करके लिखवा रहे हैं। साधारण मनुष्य का ये सामर्थ्य नहीं कि सब ग्रंथों को प्रकाश, आज जिसको जगत अथॉरिटी ग्रंथ मानती है उनके ग्रंथों को और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो सबको हम लोग अधिक मान्यता, वैष्णव लोग पढ़ते हैं हम लोग इसी की मान्यता देते हैं, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में ये वैष्णव लोग जाकर के पढ़ा सकते हैं, उनके पढ़ाने योग्य भी वो लोग नहीं हैं, उनको कोई अनुभूति नहीं, बल्कि वो सब नास्तिक अधिकांश होते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है हरिनाम में या ग्रंथ में या वृंदावन में, विशेष करके ऐतिहासिक कार्य होते हैं एकदम नास्तिक होते हैं। भीतर का अंतर का जो आत्मा का भाव है और अन्यथा कर देगा ना कोई अघटन घटन प्रत्यक्षी भगवान की ऐश्वर्य की शक्ति को वो लोग नहीं मानते हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है यहाँ पर नहीं। इसलिए उनके समस्त लीलाओं को उन्होंने देखा उन्हीं की कृपा से इनकी ये प्रधान विशेषता हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसे ही प्रधान प्रधान विशेषताएं हैं। अनुगत्य यदि करे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर के हाथों में दे दिया। स्वरूप दामोदर जी कौन थे? राधा जी की प्रिय सखी थे। ललिता सखी गुण ललिता जी उनकी सखी हैं और ऐसी सखी जो राधा जी को निर्देश करेंगी मान भंग मत करना कैसे रहना चाहिए ने? उनको शिक्षा देती हैं सब सखियों को शिक्षा देती हैं और इस जीवन में तो देखते ही हैं स्वरूप दामोदर जी का महाप्रभु की लीला में क्या स्थान है। उनके हाथों में रघुनाथ दास को दिया दूसरे को क्यों नहीं दिया? और तो बहुत लोग लाखों लोग आए किंतु इन्हीं को क्यों दिया? क्योंकि इनमें यह गुण देखा ये स्वरूप दामोदर के अनुगत हो सकते हैं दूसरे नहीं हो सकते इसलिए नहीं दिया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का दो चरित्र उनका रूप में देखा। एक होता है साधक का एक सिद्ध का। साधक रूप में चैतन्य महाप्रभु के परिकर रह करके उन्होंने जो कुछ दिखलाया है ये साधक जीवन है यदि साधन करना है तो ऐसे। और सिद्ध रूप में तुलसी मंजरी अथवा रस मंजरी रति मंजरी इत्यादि के रूप में है। इसलिए उस प्रकार से उन्होंने विलाप कुश मंजली इत्यादि में अपना और ये सब का परिचय दिया है। वो सब हम लोग देखेंगे। आज रात अंधकार हो गया इसलिए आज यहीं तक मैं उन लोगों की कृपा भिक्षा करके आप लोगों पर भी वो कृपा करें हमारे ऊपर भी कृपा करें उन पर में हम लोग प्रवेश कर सके इस तरह से प्रार्थना करके आज वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे। कल हम लोग सवेरे आरती करने के बाद में आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएंगे पाठ।